ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे राम कथा के दूसरे दिवस में। कल हमने हमारी राम कथा प्रारंभ की, जिसमें हमने सुना राम कथा के श्रवण करने का महत्व क्या है। प्रभु श्री राम, इनकी लीलाएं, इनके नाम, इनके गुण सब अनंत हैं, और हम उस पक्षी के समान हैं जो इस अनंत आकाश में कितना उड़ पाएगा, जितनी उसकी क्षमता होगी केवल उतना ही उड़ पाएगा। तो राम कथा एक समुद्र के समान है और हम उस छोटे से पक्षी के समान, और कलयुग में तो हम और भी छोटे पक्षी हैं। तो रामायण की रचना, इसकी कथा भी हमने सुनी कल कि बहुत ही रोचक है कि वाल्मीकि मुनि, इन्होंने जब क्रौंच पक्षी को देखा मैथुन सुख में, और वो निषाद व्याध जब उसने नर क्रौंच पक्षी को मार दिया अपने तीर से, तो वाल्मीकि मुनि उनके मुख से श्राप निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देखम अवधि काम मोहिता। और उन्होंने इस निषाद को श्राप दिया कि तुम कभी अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त नहीं होगे। परंतु उन्होंने देखा कि ये जो श्राप उनके मुख से निकला, ये एक ऐसे छंद में ऐसा श्लोक निकला कि जो आगे चलकर पूरी रामायण जिसमें रची गई, और स्वयं ब्रह्मा जी आकर वो वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि माता सरस्वती वो आपकी जिह्वा पर बैठकर ये श्लोक कही हैं, इसलिए आप मायूस मत हुईये, बल्कि आप अपने मन में अब दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको अब इस ग्रंथ की रचना करनी है। और ब्रह्मा जी स्वयं वो वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि जो रामायण है ये एक ऐसा ग्रंथ है कि यदि कोई केवल ये शब्द रामायण को सुन ले, रामायणेति यत्राम सकृदुच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति। केवल ये शब्द रामायण को कोई सुन ले, पूरी रामायण नहीं केवल शब्द रामायण, तो कहा गया है कि उस व्यक्ति ने 100 से भी अधिक बार गंगा स्नान कर लिया केवल रामायण शब्द बोलने से नहीं, सुनने मात्र से। रामायण 100 से भी अधिक बार गंगा स्नान हो गया और तदैव पाप निर्मुक्त, उसके सारे पाप से वो निर्मुक्त हो गया। तत्पश्चात जब इतना सब कुछ हो गया, 100 से भी अधिक बार गंगा स्नान हो गया उसका और सभी पापों से मुक्त हो गया, तो अब बचा क्या है? विष्णु लोकम सगच्छति। तत्पश्चात कि विष्णु लोक निश्चित है इस व्यक्ति के लिए। इस शरीर के अंत होने के पश्चात विष्णु लोकम सगच्छति निश्चित है। और ब्रह्मा जी वो वाल्मीकि मुनि से कहते हैं, यावत् स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। उन्होंने कहा कि जब तक नदियां और पर्वत की सत्ता इस भूमंडल पर बनी रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि नदियां और सारे पर्वत इस भूमंडल पर अपनी सत्ता जमाए हुए हैं, तब तक राम कथा का प्रचार चलता रहेगा। तो ये तो कभी नष्ट होने नहीं वाले, इनकी तो सत्ता हर समय रहेगी, अर्थात राम कथा नित्य रूप से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने भी कहा है कि रामायण जो है वो हम लोग केवल इस भौतिक संसार में कलयुग में केवल, जैसे हमने कल चर्चा की, कितने श्लोक रामायण के? 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 खंड। परंतु राम कथा देवलोक में, ऊंचे लोकों में राम कथा वो नित्य रूप से चलती आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा है रामायण शत कोटि अपार, कि वहां की जो रामायण है देवलोक की, 1 करोड़ श्लोक हैं उस रामायण में, वहां की रामायण में 1 करोड़ श्लोक हैं। और वहां पर प्रभु श्री राम की कथा के अलावा और कुछ छपता नहीं अखबारों में, क्योंकि 1 करोड़ श्लोक हैं तो कितने अखबार और कितने अन्य ग्रंथ ये सब जरूरत पड़ेंगे वहां पर इन सब की चर्चा करने हेतु। तो इसलिए केवल राम कथा की प्रशंसा इतनी हुई है। अब पिछले वर्ष हमने जो पहला खंड वो लिया, बाल खंड, आपको याद है पिछले वर्ष से कि रामायण का जो पहला खंड है बाल खंड, इसे बाल खंड क्यों कहा गया है? इस पूरे खंड में प्रभु श्री राम की कोई बाल लीलाएं नहीं है, तो हमें लग रहा होगा कि बाल खंड का अर्थ है कि प्रभु की बाल लीलाएं, इसलिए बाल खंड। एक भी बाल लीला नहीं है बाल खंड में। तो बाल खंड क्यों कहा गया है पहले खंड को? क्योंकि उस खंड में विश्वामित्र मुनि आए प्रभु श्री राम को ले जाने के लिए, और विश्वामित्र मुनि वो कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है। विश्वामित्र मुनि परम त्यागी, परम ज्ञानी, परम वैरागी, परम सिद्ध योगी। तो वो क्यों आए थे महाराज दशरथ के समक्ष राम को ले जाने के लिए? क्यों आए थे? क्योंकि कुछ राक्षस मरीच और सुबाहु और ताटका, ये सारे कुछ राक्षस, इनका गैंग, ये विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में अवरोध डाल रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि वो स्वयं भी सक्षम थे इन्हें मारने के लिए, ये साधारण से ही राक्षस थे, विश्वामित्र मुनि अकेले ही मार सकते थे इन सबको। परंतु नियम यह था कि वो जिस यज्ञ में लगे हुए थे, वो जब यज्ञ करने बैठते तब ये सारे राक्षस आते परेशान करने, और ये जानते थे कि जब ये यज्ञ के लिए बैठ जाते हैं विश्वामित्र मुनि, तो नियम है कि ये क्रोधित नहीं हो सकते। यदि क्रोध आ गया इनके अंदर तो वो यज्ञ विफल हो जाएगा। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि उस समय कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये राक्षस भी बहुत चतुर थे, ये जानते थे कि दूसरे समय यदि हम जाएंगे तो हमारा पत्ता काटने वाले हैं विश्वामित्र मुनि। परंतु वो उसी समय जाते थे जब विश्वामित्र मुनि वो असहाय होते थे, वो क्रोध भी नहीं कर पाते थे इनके ऊपर। इसलिए विश्वामित्र मुनि उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान, वैराग्य, इन सब को छोड़कर वो महाराज दशरथ के पास जाते हैं याचना करने के लिए कि प्रभु श्री राम को भेजिए, भीख मांगते हैं। जैसे कि एक बालक अपनी माता के समक्ष भीख मांगता है, वैसे विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के समक्ष भीख मांग रहे थे। किसके? प्रभु श्री राम के। तो इसलिए जो पहला खंड है उसे बाल खंड इसलिए कहा गया है कि जब तक हम विश्वामित्र मुनि की भावना में नहीं आएंगे, एक बालक की भावना में, तब तक प्रभु श्री राम नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि पहला खंड बाल खंड क्यों है। कभी प्रभु श्री राम की बाल लीलाएं सुनी है? प्रभु श्री राम अयोध्या में मक्खन चोरी करने गए कहीं, या गाय चराने गए, या अपने सखाओं के साथ कुछ खेल कूद की लीलाएं? नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य हमारे हमें सिखा रहे हैं कि जब तक हम विश्वामित्र मुनि के भाव में नहीं आएंगे, एक बालक के भाव में नहीं आएंगे, तब तक प्रभु श्री राम हमें नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो बहुत कुछ हुआ बालखंड में। प्रभु श्री राम गए विश्वामित्र मुनि के साथ, और उन्होंने सुबाहु, ताटका, इन सब राक्षसों को संभाला। तत्पश्चात वहां से कहां गए? मिथिला, जनकपुरी, और वहां पर फिर विवाह हुआ सीता स्वयंवर। तो सीता स्वयंवर के पश्चात अब अयोध्या नगरी, ये जो अयोध्या नगरी ये कौशल राज्य की राजधानी थी, जो कौशल राज्य था उसकी राजधानी थी अयोध्या। अच्छा, अयोध्या ये जो शब्द है, जो इस नगरी का नाम है, इसका अर्थ कोई जानता है? अयोद्धा, कि जिसे कोई योद्धा परास्त न कर सके, इसलिए उस नगरी का नाम था अयोध्या। तो रामायण में दो नगरियों का वर्णन किया गया है, एक है लंकापुरी और एक है अयोध्या नगरी, और दोनों का वर्णन इस प्रकार से हुआ है कि लंका का जब वर्णन हुआ है तो केवल भोग विलास के साधन वहां पर क्योंकि वहां के लंकेश श्रीमान रावण, उन्होंने अपनी सारी नगरी को केवल भोग विलास से सुसज्जित कर रखा था। और अयोध्या नगरी का वर्णन हुआ है सत्वगुण में, कि वहां पर सब कुछ सत्वगुण में स्थित था। तो जब राम और सीता का विवाह हो गया और जब वे लोग अयोध्या आए, हालांकि सबका विवाह एक साथ ही हुआ चारों भाइयों का, तो अयोध्या नगरी में हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता। हम तो केवल साल में एक बार चार पांच दिन कुछ मना रहे हैं राम उत्सव, परंतु जब राम और सीता का विवाह हुआ और वो जब अयोध्या नगरी में आए तो हर दिन कोई ना कोई उत्सव वहां पर होता। और अयोध्या नगरी की तुलना की गई है एक समुद्र से, और वो ऐसा समुद्र जिसमें दो प्रकार की नदियां समाविष्ट हो रही थी। तो अयोध्या नगरी एक समुद्र के समान, परंतु इस समुद्र को भरता कौन है? नदियां भरती हैं। समुद्र में जल कहां से आता है? नदियों से आता है। तो अयोध्या नगरी जो कि एक समुद्र के समान, तो इस अयोध्या नगरी के समुद्र में दो नदियां, केवल दो नदियां इस समुद्र को भर रही थी, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि किसे कहते हैं? समृद्धि को, और सिद्धि सफलता को। तो समृद्धि और सफलता, इन दो नदियों से अयोध्या भरी हुई थी, या अयोध्या नगरी का जो समुद्र था वो इन दो नदियों से भरा हुआ था। और यहां तक वर्णन है कि राम और सीता वो रोज नगरी में भ्रमण करने के लिए निकलते। तो नगरी में भ्रमण करने के लिए क्यों निकलते थे? क्योंकि अयोध्या नगरी के जितने भी वृद्ध व्यक्ति और जितने भी रोगी और वृद्ध व्यक्ति जब वो प्रभु श्री राम के मुख चंद्र को देखते तो उनका सारा रोग दूर हो जाता, सारी वृद्ध अवस्था दूर हो जाती। तो प्रभु श्री राम वो सबके फैमिली फिजिशियन थे, और उन्हें करना क्या होता? केवल अपने मुख चंद्र को उनके सामने ले आना। है कोई डॉक्टर आज? या जो ये अपने आप को भगवान बोलते फिर रहे हैं, इनको खड़ा करो रोगी के सामने, पहले तो देखेंगे मुख चंद्र है या मुख अमावस्या है, कि किसी का रोग दूर होता है या रोग बढ़ता है। तो प्रभु श्री राम के मुख चंद्र में इतना जादू था कि केवल उनके मुख चंद्र को देखने मात्र से रोग दूर हो जाता। कोई यदि यात्री प्रभु श्री राम के मुख चंद्र को देख लेता तो उसकी यात्रा की थकान दूर हो जाती। यदि कोई भूखा व्यक्ति प्रभु श्री राम के मुख चंद्र को देख लेता तो उसकी भूख मिट जाती। कोई प्यासा व्यक्ति, उसकी प्यास मिट जाती। तो और ऐसा नहीं था कि अयोध्या नगरी में केवल जो अयोध्या नगरी के लोग थे केवल वही इसका लाभ उठा रहे थे। 14 भुवन से अलग अलग देवतागण, अलग अलग 14 भुवन के रहवासी वो अयोध्या नगरी में आया करते थे। और अचानक अयोध्या नगरी का पॉपुलेशन बढ़ गया। कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो 14 भुवन से हर प्रकार के व्यक्ति अयोध्या नगरी में आते केवल प्रभु श्री राम के मुख चंद्र का दर्शन करने हेतु, और वो आकर गुणगान करते और सभी उनके गुणगानों में सबसे प्रमुख गुणगान होता प्रभु श्री राम का। वो कहते कि यदि कोई शीलवान व्यक्ति है तो ये है, शील निधान। जैसे कि कई नाम आप सुने होंगे, सुशील। सुशील का अर्थ क्या है? जिसके अंदर शीलता है, कैरेक्टर जिसे कहते हैं। आजकल तो होगा नाम सुशील, परंतु यदि कैरेक्टर देखा जाए तो संशय होगा कि पता नहीं सुशील वो नाम से अर्थ ठीक हो रहा है कि नहीं उसके जीवन में। परंतु प्रभु श्री राम, उन्हें शील निधान कहा गया। उनका गुणगान इस प्रकार से देवतागण करते, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने से जो बड़े होते उनकी नम्र सेवा में लगे रहते। कोई सुशील व्यक्ति है उसके ये गुण होने चाहिए, अपने से जो बड़ा है उसकी नम्र सेवा करे। जो साथ वाला है, हम उम्र का जो है, उस व्यक्ति के साथ मित्रता करे, और जो उनसे छोटा हो उसके प्रति स्नेह करे, उसे कहते हैं सुशील। तो कोई व्यक्ति यदि सुशील है तो उसके अंदर इस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो प्रभु श्री राम इस प्रकार से आदान प्रदान किया करते थे, और कौशल्या और कैकेयी ये दोनों माताएं सबसे अधिक प्रेम करती थीं प्रभु श्री राम से, और कौशल्या से अधिक कैकेयी। कैकेयी का स्नेह बहुत ज्यादा था कुछ समय तक। तो कौशल्या और कैकेयी, इनका वर्णन आया है कि इनका मनोरथ, इनका केवल एक ही मनोरथ था। ये जो संस्कृत का शब्द है मनोरथ, इसका अर्थ है कि जब मन एक रथ का रूप ले लेता है, मनोरथे ना धावतो सब ही कहा गया है, कि हम सब का मन भी एक रथ रूपी है जो कि धावतो भागता रहता है। कहां, किस दिशा में? विषय वस्तु की दिशा में। तो हमारा भी मन वो रथ के समान है, परंतु यहां पर कौशल्या और कैकेयी, इनके मन की तुलना की गई है कि इनका जो मनोरथ था वो केवल प्रभु श्री राम की दिशा में ही जाता रहता हर समय, और अयोध्या वासियों सबका मनोरथ केवल प्रभु श्री राम की दिशा में जाता। तो सभी के मन के रथ एक ही दिशा में जाते और कोई ट्रैफिक जाम नहीं। एक बार मुझे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आप लोग जो हरे कृष्णा के भक्त हैं, ये लोग सब सुबह मंगल आरती के पश्चात आप लोग बैठकर जप करते हो, तो ये सभी मंदिरों में एक ही टाइम होता है? हमने कहा हाँ, मंगल आरती का एक ही समय है सभी मंदिरों में, और आपके तो पूरे विश्व में मंदिर हैं। हाँ, तो सुबह के समय 6:45 से 7:30 तक आपके सभी इस्कॉन मंदिर में सब वो माला झोली लेकर हरे कृष्णा करते हैं। हमने कहा हाँ, आप भी करना चाहेंगे? उसने कहा नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय आप लोग सब बैठकर, और आपके इस्कॉन में कितने भक्त होंगे? सैकड़ों होंगे, लाखों की संख्या में। और ये लाखों की संख्या में, मैंने कहा इतना ही नहीं, अपने अपने घरों में भी जप करते हैं लोग, वो भी इस्कॉन के मंदिर बन गए हैं। तो अपने अपने घरों में जप होता है, इस्कॉन के मंदिरों में जप होता है, बस में बैठे जप करते हैं, ट्रेन में बैठे जप करते हैं, सोते हुए जप करते हैं, जप करते हुए सोते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये पूछते हैं कि यदि एक साथ इतने लोग ये आपके कृष्ण को बुला रहे हैं तो उधर नेटवर्क मिलता नहीं होगा ना उनको गोलोक वृंदावन में, इतना सारा एक साथ कॉल्स जा रहा है तो कंजेशन हो जाता होगा ना वहां पर। हमने कहा कि भगवान ऐसे नहीं है कि वहां पर जब उनको कोई कॉल करे तो वहां पर कंजेशन होता है। अरे हमारा कंजेशन दूर करने के लिए ये हरिनाम दिया है उन्होंने, हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे कर्मों का कंजेशन हुआ है। और ये जो ट्रैफिक जाम है जिसके वजह से हम जाम हैं यहां पर जमे हुए हैं, किसके वजह से? हमारे कर्मों के वजह से। इसलिए कल हमने सुना कि जब तक राम कथा कोई सुनता नहीं तब तक ये शरीर पापों का ढेर, ये हमारा शरीर बना किससे है? हमारे पिछले पापों से बना है। जैसे कोई पूछे ये किससे बना है, लकड़ी से बना है, ये किससे बना है, ये स्टील से बना है, तो वैसे ये शरीर किससे बना है? हमारे पिछले पापों से बना है। तो अब ये बात थोड़ी बहुत कठिन जाएगी समझने के लिए, ये आप बोल रहे हैं ये शरीर पापों से बना है, रोज तो मैं इसे इतना घिस घिस के नहलाता हूं, इतना तेल पाउडर लगाता हूं, इतना फोटो इसका खींचा मैंने, एल्बम बना रखा है, फ्रेम किया है फोटो, दूसरों को भी देता हूं, और आप कहते हैं ये शरीर पापों से बना हुआ है। हाँ, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि हमारा शरीर पापों से बना हुआ, और तब तक ये पाप बने रहेंगे जब तक कि हम राम कथा नहीं सुनते। इसलिए वाल्मीकि मुनि सिंहस्य वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कि वो सिंह के समान है और ये रामायण उनकी गर्जना है। वाल्मीकि मुनि सिंह के समान है और रामायण की जो कथा है वो सिंह की गर्जना है। तो वन में ये देखा जाता है कि जब किसी पेड़ के ऊपर बहुत से पक्षी बैठे होते हैं और जब सिंह गर्जना करता है तो सारे पक्षी छुमंतर हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे हृदय में या हमारे शरीर में ये पाप रूपी पंछी बैठे हुए हैं सब जगह पर, और जब तक वाल्मीकि मुनि जैसे सिंह रामायण के रूप में गर्जना नहीं करते तब तक ये पंछी अपना बसेरा बनाए रखेंगे। और केवल अपना बसेरा ही नहीं बनाए हैं, ये अपना घोंसला बनाए हैं और अंडे दिए हैं, वो अंडों में से और पक्षी आ रहे हैं, वो पक्षी और अंडे दे रहे हैं। ध्यान में रखना चाहिए कौन से पक्षी बोल रहे हैं हम, पाप। तो न केवल ये एक ग्रुप है पापों का हमारे शरीर के अंदर, परंतु इन पापों के वजह से और कितने सारे पापों को हम बढ़ा रहे हैं। कि जिन पापों के वजह से शरीर बना उसी शरीर को और हम पाप में लगाते हैं ताकि और पंछी आकर बैठें और अपना बसेरा जमाएं। और ये पंछियों को उड़ने में कितना समय लगेगा, आपने देखा होगा पंछी कितना जल्दी उड़ जाता है, जब भी कोई ऐसी गर्जना होती है या कोई पत्थर फेंक दे उस वृक्ष के ऊपर तो कितना समय लगता है उस पंछी को उड़ने के लिए। तो इन पापों को उड़ने के लिए कितना समय लगेगा। एक और उदाहरण दिया है कि हमारे जो पाप हैं वो एक अंधेरी कोठरी के समान है, मानो एक कोठरी जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ है सदियों से। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए जब कोई रोशनी ले जाता है कि मान लो उसमें बल्ब है, सब कुछ है, परंतु बल्ब चालू नहीं, तो सदियों से 100 वर्ष से वो कोठरी में अंधेरा है, तो जब बल्ब चालू करेगा कोई तो कितना समय लगेगा उस अंधेरे को जाने के लिए, कितना समय लगेगा उस अंधकार को उस कमरे से जाने के लिए, कुछ समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि वो अंधकार रोशनी को कहेगा अरे मैं 100 साल से यहां पर हूं, तुम अभी अभी आए, 1 मिनट हुआ नहीं, थोड़ा समय दो मुझे जाने के लिए। क्या अंधकार रोशनी के साथ ऐसा विवाद कर सकेगा। तो वैसे ही हमारे पाप चाहे कितने भी सदियों से हमारे अंदर बसे हुए हों, जब प्रभु श्री राम, जब प्रभु श्री राम के नाम की रोशनी हमारे अंदर उदित होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत ये पूरा अंधकार जाता रहेगा। और जैसे ही अंधकार वापस कब आ जाएगा, जैसे ही बत्ती बुझा दी, बत्ती बुझाई अंधकार फिर से। तो अक्सर हम हमारी साधना भक्ति में इसका अनुभव करते हैं, जब भक्तों का संग ठीक से नहीं हो रहा, जब भगवान का जप नाम जप ठीक से नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं अंधकार अब द्वार पर आ गया। और जैसे ही भक्तों का संग और नाम जप थोड़ा सा कम हुआ या बंद हुआ, अंधकार अंदर। अब देखते हैं ना, जैसे यहां पर इतने सारे बल्ब लगाए गए हैं, आप धीरे धीरे एक एक बल्ब को बंद करो, धीरे धीरे एक तरफ से कमरा अंधेरा होता जाएगा। तो हमारी साधना भक्ति भी ऐसी ही है कि जितना भक्तों का संग और नाम जप कम हुआ, उतनी मात्रा में अंधकार हमारे जीवन में आने लगा। तो कई बार हम जानते हैं स्विच कहां पर है, हम जानते हैं कि रोशनी कहां से आने वाली है, परंतु कई बार जानते बूझते लोड शेडिंग करते हैं। या कई बार हम जानते बूझते अंधकार में रहना चाहते हैं, क्योंकि अंधकार में रहेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, इस पूरे मृत्यु लोक को अंधेरी नगरी कहा गया है, तामसिक नगरी, कि यहां पर स्वाभाविक रूप से रोशनी नहीं है। जैसे कि गोलोक वृंदावन, वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां पर अपने आप वो पूरा जो लोक है भगवान का वो दैदिप्यमान है, सेल्फ ल्यूमिनस जिसे कहते हैं। परंतु क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं जो कि अंधेरी नगरी है, इसलिए यहां पर भगवान ने ये अपना बल्ब भेजा है, हैलोजन, सूर्य, और वो भी जब अस्त हो जाता है तो हमें ये सब कुछ लगाना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से यहां पर अंधकार है, इसीलिए हमारी भी चेतना स्वाभाविक रूप से अंधकार की तरफ आकर्षित रहती है। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े शहरों में लोग भोग विलास कौन से समय करना प्रारंभ करते हैं, जब अंधेरा छाता है। तो जब अंधेरा छाता है, जब पार्टियां शुरू होती है। मुंबई में एक बार हम एक बिलबोर्ड पढ़ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स, कि जो निशाचर, नॉक्टर्नल किसे कहते हैं, निशाचर, कि स्वागत है निशाचर प्राणियों के जगत में। और ये जो निशाचर प्राणी, ये चर बिचर कब करने लगते हैं, जब अंधकार छाता है तब इनका दिन शुरू होता है। अब देखिए ये भी स्वाभाविक ही हम समझेंगे कि जब कोई ये फिल्में देखने जाते हैं तो उसमें अंधकार करना पड़ता है। जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक वो सामने क्या दिखाई दे रहा है वो ठीक से दिखेगा नहीं, इसलिए सब बत्तियां बुझानी पड़ती हैं। सब बत्तियां बुझाने के बाद जब पूरा तामसिक वातावरण होता है, अंधकार, तब फिर माया में मजा आता है ना। तो इसलिए प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम की कथा, वो उस रोशनी के समान है जो हमारे अंधकार के हरेक कण को दूर कर सकती है, यदि हम चाहें तो। तो अयोध्या नगरी उस समय ऐसी हुई थी कि सारे अयोध्या वासी, विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं कौशल्या और कैकेयी, कि ये इनकी इनका जो मनोरथ, इसकी तुलना एक पौधे से की गई है। एक ऐसा पौधा जो लता में परिणित हुआ है, और जैसे ही प्रभु श्री राम और सीता वो विवाह करने के पश्चात अयोध्या आए तो इनकी लता बढ़ने लगी, और बढ़ते हुए इनकी लता फैल रही थी 14 भुवन में। किनकी? कौशल्या और कैकेयी के मनोरथ की लता 14 भुवन में फैल रही थी। और महाराज दशरथ के विषय में कहा गया है कि उनका सौभाग्य तो कोई तुलना भी नहीं कर सकता था, कि क्या सौभाग्य था महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ, बड़े बड़े देवतागण अपने देवलोक से आते केवल महाराज दशरथ के चरण रज को लेने के लिए, कि वो ये जानते कि प्रभु श्री राम जिनके पुत्र बने हैं ये महाराज दशरथ, इनकी चरण रज यदि हमें मिल जाएगी तो हमारा भी सौभाग्य इनके समान होगा। इसलिए वो प्रभु श्री राम के चरण रज के पीछे नहीं आते थे, वो अयोध्या नगरी में आते थे केवल महाराज दशरथ की चरण रज लेने। महाराज दशरथ वो रोज अपना भोजन बिना प्रभु श्री राम के साथ नहीं लेते। जब भी भोजन का समय होता, राम कहां है, यदि उन्हें पानी भी पीना है तो राम का नाम लेकर पीते, राम का दर्शन लेकर पानी पीते। अब सौभाग्य देखिए महाराज दशरथ का, हम यहां पर प्रभु श्री राम को भोग चढ़ाते हैं, महाराज दशरथ का सौभाग्य देखिए कि वो इनके साथ बैठकर खाते थे। इसे कई बार आजकल भी आपने सुना होगा कि कई ऐसी स्पर्धाएं निकलती हैं, भौतिकतावादी स्पर्धाएं, जिसमें सुनाया जाता है कि फर्स्ट प्राइज लंच विथ सचिन तेंदुलकर, डिनर विथ कोई अभिनेत्री, उसके साथ डिनर। तो सभी एकदम ये सब स्पर्धाओं में भाग लेते हैं, और कोई अगर जीत गया तो अरे मैंने लंच लिया किसके साथ, वो सचिन तेंदुलकर के साथ। वो क्या हुआ लंच में, वो खा रहा था और तुम क्या कर रहे थे, मैं देख रहा था और तुमने खाया नहीं। अरे खाते तो रोज हैं यार, उसको देख रहा था वो कैसे खाता है। तो इसे लोग सौभाग्य मानते हैं कि मैंने इसके साथ बैठकर लंच लिया, मैंने उसके साथ बैठकर डिनर लिया। या कई बार वो कहीं दूर भी बैठा हो तो उसे तो टीवी में भी देख सकते हैं खाते हुए। नहीं नहीं नहीं, वो दूरदर्शन, ये निकट दर्शन और साक्षात दर्शन। तो इसमें ये सौभाग्य मानते हैं अपना। तो सोचिए कि जो सभी अभिनेताओं के अभिनेता प्रभु श्री राम, वो महाराज दशरथ के साथ बैठकर भोजन लिया करते थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इन्होंने एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए पूछ रहे थे कि बताओ ये जो इस्कॉन संस्था है, ये इस्कॉन संस्था का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो सभी भक्त बता रहे थे कि इस्कॉन संस्था का मुख्य प्रयोजन है कि कृष्ण भावनामृत सब जगह फैले। प्रभुपाद ने कहा नहीं। फिर एक भक्त ने कहा प्रभुपाद इस्कॉन का पर्पज है कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को सब जगह फैलाएं। प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो सभी हैं नहीं, हम लोग कर क्या रहे हैं फिर। तो सभी अपने अपने मत दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा द पर्पज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज दैट वन डे वी शुड ऑल सिट ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना एंड एंजॉय अ नाइस पिकनिक विथ कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम सब एक दिन जमुना के तट पर, जो वहां के पति हैं जमुना पति, इनके साथ बैठकर पिकनिक मनाएं। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या आप लोग सब उन गोपाल के साथ जमुना के तट पर पिकनिक मनाना चाहते हो। तब फिर प्रभुपाद ने कहा तो हरि नाम लो, चार नियम पालन करो। इसे कहते हैं सौभाग्य कि लोग कहते हैं कि मुझे ये अभिनेता ये अभिनेत्री इसका महामिला, जैसे कई ये जो खेल कूद करने वाले, खेलने और कूदने वाले बंदरों की तरह, तो कई फुटबॉल प्लेयर, इनके विषय में बताया गया है कि कई ऐसे देशों के फुटबॉल प्लेयर इतने इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि वो जब किसी मैच को जीतते हैं तो एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर था जिसका नाम था मैराडोना, तो ये एक मैच जीतने के बाद इसने अपने मोजे ऑक्शन में रखे, सॉक्स मोजे बदबूदार, कोई 3 फीट भी उसके निकट खड़ा नहीं हो सके, और करोड़ों में वो एक मोजा बिका, और जिसने खरीदा उसने कभी जिंदगी भर धोया नहीं, अरे उसका पसीना है उसमें, उसे धो दूंगा तो फिर उसका महा धुल जाएगा। एक कोई गवैया था एल्विस प्रेस्ली, ये एल्विस प्रेस्ली इतना प्रसिद्ध था कि इसके घर के कचरे के डब्बे का कचरा उसका ऑक्शन हुआ। और उसमें से कोई छोटा सा कचरे का कोई कोई टुकड़ा वो $10,000 में बिका। एल्विस प्रेस्ली के कचरे के डब्बे का कचरा, तो हम ये बता रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर ये धारणाएं भावनाएं हैं कि ऐसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का हमें महा मिले, तो इसलिए यदि कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे अरे तो आप यदि किसी के सड़े हुए बदबूदार मोजे को खरीद सकते हो करोड़ों रुपयों में, तो हम हमारे शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का चखा हुआ प्रसाद क्यों नहीं उसे बहुमूल्य कहेंगे। हा? तो अक्सर लोग पूछते हैं ये आप जो इसे प्रसाद कहते हो ये क्या प्रसाद, क्या ये तो आपने उधर ऊपर रखा और कुछ समय बाद उसे उतार लिया, तो वही तो चावल वही दाल वही जैसे ऊपर ले गए थे वैसे आ गया नीचे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये पागलपन है कि वही भोजन होटल में वो प्रसाद नहीं परंतु आपके यहां पे प्रसाद, तो फिर हम पूछते हैं कि वही मोजा अरे 10 रुपए में मिल जाएगा आपको भारत में, उसे करोड़ों रुपए देकर उसे बोलो कि क्या ये मोजा जो 10 रुपए में मिलता है वो भी साफ नया कोई बदबू नहीं उसमें, परंतु ये बदबूदार सड़ा हुआ उसको करोड़ों रुपए दे रहे हो, ए अपराध कर रहे तुम, मोजे का अपराध किया तुमने। खैर मेरे पास लंबा लिस्ट है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं और क्या क्या पागलपन चल रहा है आजकल दुनिया में, क्योंकि फिर आप लोग चकरा जाएंगे। तो दशरथ महाराज का सौभाग्य देखिए कि प्रभु श्री राम के साथ बैठकर वो अपना भोजन लिया करते थे, इसलिए महाराज दशरथ के विषय में रामायण में बहुत कुछ कहा गया है। मंगल भवन मंगल हारा द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारा, मंगल के जो भवन हैं, कौन है? प्रभु श्री राम। जो मंगल के भवन हैं, जैसे कि हमारा भवन ये शरीर अमंगल का भवन है, तो प्रभु श्री राम जो कि मंगल के भवन हैं, अमंगल हारा, वो केवल मंगल के भवन नहीं बल्कि जो अमंगल हैं और जिनका भवन अंगम अमंगल से भरा हुआ है, बना हुआ है, उनको हर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो खुद स्वस्थ होगा, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी स्वस्थ बना सकता है। कोई व्यक्ति सुंदर दिख रहा होगा परंतु जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी सुंदर बना दे। अक्सर तो जो सुंदर होते हैं वो दूसरे को कुरूप बनाने में लगे रहते हैं कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई ना बन जाए। परंतु भगवान श्री राम जो कि मंगल के भवन हैं, वो इस पूरे संसार के अमंगल को हर रहे हैं, और विशेष रूप से द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारा। और दशरथ महाराज, इनके अजिर में केवल प्रभु श्री राम ही निवास करते, रोम रोम में केवल प्रभु श्री राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। इस प्रकार से दशरथ महाराज, इनकी स्थिति ऐसी थी कि और कुछ नहीं, जैसे कि कलयुग में एक कामुक व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, मेरे मन में काम, तन में काम, रोम रोम में काम रे, काम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ राम का नाम रे। उसके विषय में ये कहेंगे, बोलो काम, बोलो काम। तो किसी को भी बोलो राम का नाम लो, काम, अरे काम करना पड़ता है ना इतना, और काम क्यों इतना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर काम है। परंतु महाराज दशरथ रोम रोम उनका बना हुआ राम के नाम से, यह सौभाग्य था महाराज दशरथ का। और बड़े बड़े देवता आते महाराज दशरथ का दर्शन करने, केवल यदि प्रभु श्री राम का भी दर्शन नहीं मिलता तो केवल महाराज दशरथ का दर्शन कर कर वो तृप्त हो जाते। तो एक दिन महाराज दशरथ वो अपने राजसभा में बैठे हुए थे और सभी मंत्रीगण उन्हें घेरे हुए और राज का कारभार संभालते हुए चर्चाएं चल रही थी। तो महाराज दशरथ, इन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा, वहां पर एक स्तंभ था, वो अलग अलग रत्नों से जड़ित और उसमें छोटा सा आईना था। तो महाराज दशरथ ने अपने आप को आईने में देखा। तो महाराज देखते क्या हैं दशरथ, कि उनके कान के निकट के जो केश हैं वो सफेद हो गए थे। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही अपने आप को देखा, कान के निकट के केश सफेद हो गए, तुरंत उनके मन में ये संकेत उन्हें मिल गया। क्या संकेत? मेरा समय आ गया, मुझे अब ये राज्य राम को दे देना चाहिए। अब यहां पर देखिए, जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, और कान के यहां पर यदि केश को सफेद होता देखें तो हमारे अंदर क्या संकेत मिलता है हमें, कहां है मेहंदी, लगाओ मसाला वो डाय वाय और पोतो काला करो इसे। और इसलिए नीति में कहा गया है कि जब बाल सफेद होते हैं किसी के तो कान के यहां से शुरू होते हैं सफेद होना। सबसे पहले कान के यहां से बाल सफेद होना शुरू होते हैं, क्यों? क्योंकि मृत्यु वो कान में संदेशा देने आती है, तुम्हारा समय आ रहा है, इसलिए वो सफेद बाल के द्वारा कान में संदेशा देने आती है मृत्यु। इसलिए हमारे शरीर के जितने भी सारे अंग हैं, जैसे जैसे वृद्ध अवस्था में ये शरीर जाता है तो मृत्यु अलग अलग संदेशा देती है। ये घुटनों में दर्द, तो मृत्यु संदेशा दे रही है घुटनों के दर्द के द्वारा कि ये जो ढांचा बना है ना तुम्हारे पुरंजन नगर का, इसे पुरंजन नगर कहा है शरीर को, तो इसे अभी हिलाना शुरू किया है मैंने। जैसे किसी इमारत को गिराना होता है तो धीरे धीरे उसके फाउंडेशन हिलाना शुरू करते ना उसकी फाउंडेशन हिलाओ धीरे धीरे, वो अंग्रेजी में उसे कहते प्लान्ड डेमोलिशन। तो वैसे ही मृत्यु ये सब संकेत भेजती है, यहां से बाल सफेद तो कान में वो संदेशा मिल जाता है, तैयार होना शुरू हो जाओ, यहां पे दर्द शुरू, फिर मोतियाबिंद वो कि अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और फिर ये ऊंचा सुनना, अक्सर क्या होता है वृद्ध अवस्था में हम ऊंचा सुनना लग, पता नहीं उसे ऊंचा क्यों कहते हैं, कि अगले व्यक्ति को जोर से चिल्लाना पड़ता है इसलिए, हालांकि ये कान को ऊंची बातें सुननी चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से भक्त ऊंचा सुनते हैं, है ना, सभी भक्त ऊंचा सुनते हैं क्योंकि सबसे ऊंची बात सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये कान जो है ऊंचा सुनना लगते हैं, केश सफेद हो जाते हैं, और घुटनों में दर्द, और फिर धीरे धीरे यदि उससे भी समझ में नहीं आए तो फिर मृत्युदेवी वो बाल भी निकालना शुरू कर देती, कि यदि उससे भी संदेशा नहीं मिला है तो अब ये सारे बाल निकालना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल देखा क्या जाता है कि मृत्यु को धोखा देने के लिए इन सब को कवर अप किया जाता है, बाल को काला कर लो, इसका ऑपरेशन कर लो, और यहां पर मशीन फिट कर लो। तो चाहे हम कितना भी कॉस्मेटिक अरेंजमेंट करें, मृत्यु देवी जो है या मृत्यु जो है वो अपने समय पर दस्तक देने ही वाली है। एक बार एक व्यक्ति, उसे पता लग गया था, उसे ज्योतिषी ने बता दिया था कि तुम्हारे मृत्यु का दिन कौन सा है, तो उसे पता लग गया कि उसके मृत्यु का दिन कौन सा है, और उसे पता था कि कोई वैकुंठ विमान नहीं आने वाला लेने के लिए, ये भी बता दिया था कि आएंगे तो यमदूत, और ज्योतिषी ने इसे बता दिया कि तुम्हारे लिए विशेष रूप से स्वयं यमराज आने वाले एचओडी, क्योंकि इतने कुकर्म तुमने किए हैं कि वो स्वयं आने वाले हैं ले जाने के लिए, पर्सनल एस्कॉर्ट करेंगे तुम्हें। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि यमराज जो है वो भगवान के भक्त हैं, महाजन है वो, तो यमराज जो हैं वो जब आएंगे जिस दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं एक ऐसा प्रयोजन कर लूंगा कि यमराज वो मुझे देखते ही भाग जाए। सोचिए, लोग यमराज को देख के भाग जाते हैं और ये प्रयोजन कर रहा था कि यमराज मुझे देखकर भाग जाए। तो इसका प्रयोजन क्या था, देखिए, इसने सोचा कि यमराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो सत्व गुण में हैं, तो जो भी गंदगी और तमोगुणी चीजें जो हैं इनसे दूर रहते होंगे यमराज जी। तो इस व्यक्ति ने उस दिन अपने पूरे शरीर पर विष्ठा का लेप कर लिया। और विष्ठा सब समझते हैं ना, मल का लेप कर लिया कि जब यमराज ये आएंगे तो दूर से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भाग जाएंगे। तो यमराज जी को समझ गया कि ये व्यक्ति क्या तिकड़म लगा रहा है। तो यमराज जी ने किया क्या, अपने साथ एक सुअर को लेकर आए। अब सुअर बेचारा डर रहा, आपके साथ किधर जा रहा, किधर लेके जा रहे हैं। यमराज ने कहा, अरे चलो मेरे साथ, फीस्ट है तुम्हारे लिए, संडे फीस्ट। तो सुअर को संडे फीस्ट के लिए ले गए। तो बेचारा सुअर डरा हुआ यमराज के साथ कहां जाना पड़ रहा है। तो फिर यमराज जी ने वहां पहुंचते ही सुअर को दिखाया, देखो ये है 5-स्टार होटल तुम्हारे लिए, और तुम्हें कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, जाओ जितना मेनू कार्ड में से जितना लेना है ले लो। तो सुअर ने अपना काम शुरू कर दिया। और सुअर वो सोच नहीं पा रहा था कि ये कौन व्यक्ति है जिसने इतने अच्छी तरीके से मेरे फीस्ट का प्रबंध किया है। तो सुअर भाव विभोर हो रहा था। कई बार होता है ना, हम जब हमारी पसंदीदा वस्तु खाते रहते हैं तो बीच बीच में हम रुककर थोड़ा भाव विभोर हो जाते हैं। अरे गुलाब जामुन, एक बाइट खाने के बाद गुलाब जामुन, फिर दूसरा बाइट खाते गुलाब जामुन। तो वैसे ही ये सुअर ये भाव विभोर हो रहा था। और ये जो व्यक्ति, ये व्यक्ति जिसने ये सब तिकड़म लगाया था, इस व्यक्ति की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। तो यमराज जी जब देखे कि सुअर ने ढकार ले ली है, तो यमराज जी फिर आए, तो पहचाना, मैं तुम्हें पहचान गया, चलो द्वार खुले हैं, स्वागतम आपका यमलोक में। तो आजकल यमराज को भी धोखा देने के लिए बहुत से प्रयोजन किए गए हैं। तो यहां पर महाराज दशरथ हमें सिखा रहे हैं कि महाराज दशरथ को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो इस प्रकार से अपने वृद्ध अवस्था को देखते हुए वो चिंतित हों, परंतु तुरंत उन्होंने जब सफेद बाल देखे तो तुरंत मन में एक ही विचार आया कि वो अवसर ढूंढ रहे थे, कोई कारण ढूंढ रहे थे प्रभु श्री राम को राजा बनाने के लिए। तब उन्हें कारण मिल गया, बाल सफेद हो रहे। तो जब महाराज दशरथ अपने आप को आईने में देख रहे थे तो बाकी सारे मंत्रीगण सुमंत्र जो उनके प्रमुख मंत्री थे वो देख रहे कि महाराज दशरथ अपने आप को आईने में क्यों देख रहे, क्योंकि महाराज दशरथ वो कोई भौतिकतावादी मनुष्य जैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे को निहार रहे थे। जब लोग देखते हैं अपने आप को आईने में तो रुक जाते हैं, कैसा दिख रहा हूं मैं, आईने में मेरी चितवन कैसी दिख रही है, फिर थोड़ा साइड में हटके देखते हैं साइड प्रोफाइल कैसा है मेरा, फिर थोड़ा बाल को यहां वहां करके देखते हैं, यहां अच्छा लगता है कि वहां अच्छा लगता है, यदि है तो। परंतु महाराज दशरथ कोई भौतिकतावादी मनुष्य के समान नहीं थे, वो प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे थे उसमें भी। तो तुरंत वो अपने सिंहासन से खड़े हुए और सिंहासन से खड़े होकर सीधे वो निकल पड़े अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से मिलने। और सभी मंत्रीगण वो आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक अपने आप को आईने में देखा और ये खड़े होकर कहां चल दिए। तो चले जा रहे हैं अकेले और सभी पीछे आने उन्होंने प्रयास किया आने का तो सबको रोक दिया। तो गए वशिष्ठ मुनि के समक्ष और वहां जाकर वशिष्ठ मुनि को उन्होंने प्रणाम दंडवत किया और वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप ऐसे गुरुजन हैं कि आपके अंदर मैंने देखा है कि आप अभिलाषा करने से पहले फल की पूर्ति आपकी हो जाती है। वशिष्ठ मुनि का गुणगान कर रहे हैं महाराज दशरथ, अभिलाषा से पहले फल की पूर्ति आपकी हो जाती है। अब ये इक्वेशन हमें समझ में नहीं आएगा कि इच्छा करने से पहले वो इच्छा पूरी हो गई, अरे यहां पे तो समस्या है इच्छा कर करके पूरी नहीं हो रही, इच्छा कर प्रयास कर फिर भी पूरी नहीं हो रही। परंतु वशिष्ठ मुनि इनका गुण ऐसा था कि अपनी इच्छा अभिलाषा से पहले फल की पूर्ति हो जाती। तो महाराज दशरथ इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि का और वो कहते हैं कि आप प्रामाणिक गुरु हो। अब यहां पर ध्यान से सुनिए कि महाराज दशरथ बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु कौन होना चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप प्रामाणिक गुरु हो क्योंकि आपने मुझे प्रभु श्री राम दिए हैं। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ मुनि ने जो पायसम दिया था यज्ञ के द्वारा उसके वजह से प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब जन्मे। तो यहां पर महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि आप प्रामाणिक गुरु हैं क्योंकि प्रामाणिक गुरु वही है जो अपने शिष्य को राम दे, न कि काम। तो हमें महाराज दशरथ सिखा रहे हैं कि कोई प्रामाणिक गुरु है उसे हम कैसे परखेंगे कि क्या ये गुरु मुझे प्रभु श्री राम दिला रहे हैं कि नहीं। आजकल जो तथाकथित गुरु हैं, राम तो दूर की बात है, वो अपने स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मुझे लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आओ। परंतु वो माम एकम भगवान ने कहा है। तो कई गुरु हैं वो गीता के ऊपर अपनी टिप्पणी ऐसे देते हैं कि भगवान जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम तो भगवान ने हमें नियुक्त किया है कि हम जो हैं हमारी शरण में तुम लोग सब आओ और फिर हम तुम्हें तारेंगे। परंतु महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि का गुणगान उस दृष्टिकोण से नहीं कर रहे कि आपका जो आशीर्वाद वो मूर्तिमान रूप में प्रभु श्री राम में परिणित होकर हमें मिला है, इसलिए आप प्रामाणिक गुरु हैं, इसलिए आपके समक्ष मैं एक याचना लेकर आया हूं। और वो क्या याचना? ये नहीं कि आप अपने आशीर्वाद से मेरा बुढ़ापा दूर कीजिए, ये जो सफेद बाल हुए हैं इसे काला कीजिए। वो क्या याचना लेकर आए कि मेरी यही याचना है कि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र राम अब उसका राज्याभिषेक हो और वो राजा बने। तो वशिष्ठ मुनि जब उन्होंने ये सुना तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि महाराज दशरथ, सबसे पहले तो आपका सौभाग्य ऐसा है कि स्वयं विष्णु साक्षात भगवान वो आपके पुत्र के रूप में आए हैं। और वशिष्ठ मुनि उन्होंने कहा कि इस पूरे भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों के अंदर जो जलन है, तप्त अवस्था, ये जो जलते हुए जीव हैं, इनके अंदर की जलन तब तक दूर नहीं होगी जब तक ये राम का भजन नहीं करेंगे, वशिष्ठ मुनि ने कहा। इसलिए आपकी याचना के अंदर कोई जलन नहीं दिख रही क्योंकि आप हर समय राम का भजन करते रहते हैं। परंतु किसी जीव के अंदर यदि जलन हो रही है तो जलन का कारण क्या है? राम भजन नहीं हो रहा। और यदि राम भजन हो रहा है तो जलन नहीं होनी चाहिए। अब हम यहां पर जलन किसे कह रहे हैं? ताप, पश्चाताप सुना होगा आपने। ये ताप कहते हैं क्योंकि इस भौतिक संसार में सभी तप्त हैं, तप रहे हैं त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इन तापों से सभी तप रहे हैं। तो यदि इस तप्त अवस्था से, इस जलन से किसी को मुक्ति चाहिए तो राम का भजन करना होगा, वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। तो फिर इन्होंने पूछा, दशरथ महाराज ने पूछा, तो आप कोई मुहूर्त निकालिए, अच्छा लगन निकालिए जिस दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो सके। तो वशिष्ठ मुनि कहे कि मुहूर्त निकालना पड़ता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि तीन गुणों के अधीन हो। अरे जो तीन गुणों के परे है, जो सारे शुभ मंगलों के भवन है, वो जिस दिन भी राज्याभिषेक उनका हो वही मुहूर्त उनका है। अरे उन्हीं से तो मुहूर्त बनता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कोई मिठाई बनाए हैं, गुलाब जामुन या रसगुल्ला कोई मिठाई बनाई है, तो उस मिठाई को वो किसी बर्तन में डालता है। तो अब वो जो बर्तन है, मानो स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन या तांबे का बर्तन या मिट्टी का बर्तन, जो भी बर्तन है, वो बर्तन मीठा नहीं है। अभी मान लो आपके सामने किसी छोटे से कुल्हड़ में, कुल्हड़ आप लोग जानते हैं, माटी का बर्तन होता है छोटा, माटी के कुल्हड़ में कोई आपको रसगुल्ला ला कर दिया, तो आप क्या वो बर्तन को खाना शुरू करेंगे पहले? उसके अंदर जो मिठाई है उसे खाएंगे ना। अब मान लो कि बर्तन ही रसगुल्ले का बना है, जैसे कि हम लोग एक जगह पर थे पाश्चात्य देश में, रशिया में, तो वहां पर एक होटल है और उस होटल में वो लोग एक कुछ तो बनाते हैं, पता नहीं किस चीज किस वस्तु का कोई व्यंजन बनाते हैं, और वो व्यंजन इतना प्रसिद्ध है वहां पर कि जो भी वहां पर उस व्यंजन को खाने आता है वो उस व्यंजन को खाने के पश्चात उस बर्तन को चाटने लगता है, और इतना ये लोग चाटते रहते हैं उस बर्तन को कि थोड़ा सा भी वो छूट न जाए कण मात्र भी, तो बर्तन तोड़ देते हैं। तो इस होटल में इन्होंने देखा कि जब भी वो व्यंजन कोई खाने के लिए बैठता तो प्लेट टूट जाती। तो फिर इन्होंने प्लेट बनाई एक खाद्य पदार्थ की कि वो व्यंजन, एक इतना बड़ा ब्रेड, ब्रेड जैसा प्लेट बनाया, ब्रेड की प्लेट बनाई और उसके ऊपर वो व्यंजन सर्व किया, तो फिर वो उसके साथ खाओ, प्लेट के साथ उस व्यंजन को खाओ। तो मान लो कोई मिठाई है जो कि वो मिठाई वो पात्र है, तो वैसे ही प्रभु श्री राम, ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम के अंदर सभी मंगल हैं, वो बने हुए हैं सभी मंगल चिन्हों से। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कोई पत्रिका या लगन या मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कल ही राज्याभिषेक कर दो, कल तुरंत राज्याभिषेक कर दो। और कई आचार्य बताए हैं कि वशिष्ठ मुनि ने देखा था, बहुत से शास्त्र देखे और देखने के बाद दूसरे दिन का मुहूर्त निकाला था, ये ऐसा भी कहा गया है। तो इसमें यह शिक्षा मिल रही है कि यदि कोई वशिष्ठ मुनि जैसे मुनि यदि किसी का मुहूर्त निकालें, तो मुहूर्त वशिष्ठ मुनि ने निकाला था, परंतु क्या हुआ उस मुहूर्त के दिन, राज्याभिषेक हुआ, उल्टा, पूरा उल्टा हुआ राज्याभिषेक के विपरीत, कि जो मुहूर्त वशिष्ठ मुनि ने निकाला था उस मुहूर्त के वजह से प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ा। तो मानो सारे अयोध्यावासी वशिष्ठ मुनि के पास जाते और कहते कि किसने, तुमने मुहूर्त निकाला था, और कोई दिन मिला नहीं था। तो हम अब इस विरोधाभास को कैसे समझेंगे कि जो मंगल के भवन हैं और उन्हीं के साथ ये अमंगल हो रहा है, उसी दिन जिस दिन उनका मंगल होना चाहिए और वो भी वशिष्ठ मुनि जैसे मुनि निकाले हैं उनका मंगल लगन, तो कैसे आप समझेंगे? भगवान की लीला, सभी प्रश्नों के एक अच्छा उत्तर है हमारे पास, लीला। हाँ, सही उत्तर है एक दृष्टिकोण से। यहां पर देखिए, प्रभु श्री राम वो हम सबको सिखा रहे हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े पंडित के पास चले जाओ, कितने भी बड़े पुरोहित के पास चले जाओ, कितने भी बड़े ज्योतिष के पास चले जाओ, कितने भी बड़े वास्तु विशेषज्ञ के पास चले जाओ, और उसने सब कुछ देख भाल कर आपको कहा होगा कि ये घड़ी, ये दिन शुभ है, शुभ मंगल सावधान, उसने सब शुभ मंगल बोलकर आपको सावधान कर दिया होगा। परंतु यदि प्रभु की इच्छा नहीं तो ये सारे पंडित, सारे ब्राह्मण, सारे पुरोहित बगल में खड़े हो जाएंगे, किसी की नहीं चलने वाली। कि यदि वशिष्ठ मुनि द्वारा निकला गया मुहूर्त काम नहीं किया तो और कौन है उनकी तुलना में। आजकल के जो ये पंडित पंडा घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ लगन है, इनकी तुलना यदि वशिष्ठ मुनि से की जाए तो कहां खड़े होंगे ये इनके सामने। इसलिए प्रभु श्री राम वशिष्ठ मुनि को लेकर उदाहरण दे रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा है वन गमन करने की तो कोई मुहूर्त उन्हें रोक नहीं सकता। ये एक पहलू है इसके समझने का। इसलिए हमें भी समझ लेना चाहिए कि जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होगी, ये बाकी सारे जो कर्मकांडी विधियां हैं ये कुछ काम नहीं आने वाली। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो ये एक पहलू। और दूसरा पहलू ये कि प्रभु श्री राम ये जता रहे थे कि प्रभु श्री राम यदि राजा बने या वन में जाएं, उनके साथ जो कुछ होता है वो मंगल है। ये हमें समझना नहीं है कि क्योंकि उस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और वो बंद होकर वो वन गमन हुआ तो बहुत अमंगल हुआ उनके साथ। कई बार लोग कहते बेचारे प्रभु श्री राम के साथ बहुत अमंगल हुआ। अरे हम हैं बेचारे जो यहां विचरण कर रहे हैं अपने कर्मों के फेर में, और हम विचारों के लिए वे आते हैं। तो भगवान श्री राम ये दर्शा रहे थे कि चाहे उनका राज्याभिषेक हो या उस दिन उन्हें वनवास मिले, दोनों में मंगल ही मंगल है। और हमारे संदर्भ में क्या होता है कि चाहे हमारे संदर्भ में हमें राजा भी बना दिया जाए, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं जो कि अमंगल का भवन है, तो यहां पर चाहे कोई राजा बना है या रंक, राजा और रंक दोनों अमंगल हैं इस संसार में। और प्रभु श्री राम के संदर्भ में वो दोनों मंगल हैं। तो ये प्रभु श्री राम वशिष्ठ मुनि के द्वारा हमें सिखला रहे थे। तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ से कहा कल ही इनका राज्याभिषेक कर दो, तो महाराज दशरथ उनके अंदर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हुई। एक तो महाराज दशरथ वो फूला नहीं समा रहे थे आनंद से। ऐसा नहीं महाराज दशरथ सोचने लगे अरे कल ही रिटायर कर रहे। जब कोई किसी रिटायरमेंट का नोटिस दिया जाता है तो बहुत धक्का लगता है, अरे मैंने इतने वर्ष इस कंपनी में नौकरी की और मुझे अभी रिटायर कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं कि नहीं। तो महाराज दशरथ वो फूले नहीं समाए जब उन्होंने ये सुना कि कल ही राज्याभिषेक, और उसके साथ साथ महाराज दशरथ के मन में थोड़ा डर भी था कि एक दिन में तैयारियां कैसे होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक है, कोई साधारण व्यक्ति का नहीं। तो यदि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक तो बहुत ऐश्वर्यशाली तरीके से होना चाहिए, तो एक दिन में ये सारी तैयारियां कैसे होगी, तो ये एक भावना उनके अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो रहा था। तो भय और आनंद ये दोनों भावनाओं से मिश्रित महाराज दशरथ। कल्पना कीजिए, कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी होती है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली होती हैं जब हमारे अंदर ये मिश्रित भावनाएं होती हैं कि उत्साह, आनंद, भय, है ना, रिजल्ट आने वाला है, तो उत्साह होता है, थोड़ा आनंद होता है, हाँ मैं पास हो जाऊंगा, दूसरे क्लास में जाऊंगा, परंतु उसके साथ साथ थोड़ा भय भी होता है, फेल हो गया तो कम मार्क्स मिले तो। परंतु यहां पर क्योंकि ये सारी भावनाएं, हर्ष की भावना और भय की भावना प्रभु श्री राम के संदर्भ में थी, इसलिए दोनों दिव्य भावनाएं थी, इसलिए दशरथ महाराज तुरंत अब वहां पर वो ज्यादा रुक नहीं सकते थे, क्योंकि कल तक का ही समय है, तो तुरंत वो भागे भागे आए, और वो ऐसे भाग रहे थे कि उन्होंने अपना रथ भी नहीं लिया, तो सारे अयोध्या वासी देखने लगे कि आज हमारे महाराज बिना गाड़ी के, रथ नहीं, भागे चले जा रहे हैं, तो सभी को लगा कि कुछ तो बहुत ही अच्छा घड़ने वाला है, इसलिए इतना प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। तो महाराज दशरथ भागते हुए अपने महल में गए और अपने सचिव और मंत्रीगण, सुमंत्र, सबको बुलाया और उन सबको ये शुभ समाचार दिया, और सभी जब एकत्रित हुए तो उन्होंने ये अपेक्षा रख ली थी कि शायद यही समाचार होगा, क्योंकि वो अब तक दशरथ महाराज को कहे नहीं थे, उनके मन में कब से यही इच्छा थी कि कब प्रभु श्री राम राजा बने। ऐसा नहीं कि वो महाराज दशरथ से उब गए थे, परंतु उनके अंदर इच्छा थी कि कब वो घड़ी आएगी, और वो इच्छा क्यों थी कि हमारे मृत्यु से पहले हमें प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक देखना है, इसलिए इतने आतुर थे ये सब। तो जब उन्होंने महाराज दशरथ को इतना प्रसन्न देखा, प्रफुल्लित देखा, और महाराज दशरथ ने सबको बुलाया, मीटिंग बुलाया, तो सभी दौड़े हुए गए, और सभी जानते थे कि ये वशिष्ठ मुनि से मिलकर आए हैं। तो जब ये समाचार उन सबको सुनाया गया, और महाराज दशरथ ने उनसे सलाह ली, देखिए उनके नम्रता, ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रभुता दिखाते हुए मैंने निर्णय लिया है कि कल राज्याभिषेक होगा राम का और ये सब तैयारियां शुरू कर दो, वो सबसे सलाह ले रहे थे। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि ये सारे मंत्रीगण जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वो महाराज दशरथ से कहते हैं कि आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे अंदर ये एक मनोरथ था, कौन सा मनोरथ, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक देखने का मनोरथ, और ये जो मनोरथ एक पौधे के समान था अब तक, जिसके ऊपर अब तक किसी ने पानी की एक बूंद नहीं डाली थी। तो हमारी इच्छा थी ये, परंतु इस इच्छा को पूर्ति करने का कोई साधन हमारे सामने नहीं दिख रहा था। तो यह हमारी इच्छा, हमारा मनोरथ उस पौधे के समान जिसमें आज तक किसी ने पानी नहीं डाला, तो मुरझा रहा था यह पौधा। और यदि आज आप ये समाचार को नहीं सुनाते तो कल ये पौधा मरने वाला था। यह पौधा अपने मरने की स्थिति तक आ गया था। कौन सा पौधा? हमारे इस मनोरथ का पौधा। और आपके मुख से निकले हुए ये जो वाक्य हैं, ये उस वर्षा के समान है जिसकी प्रतीक्षा में यह पौधा इतने सदियों से रुका हुआ था। इसलिए आप नहीं जानते कि आपने हमें कितना आनंद में डाल दिया है। और सभी मंत्रीगण कहे कि हमें चिंता हो रही कि इतना आनंद हमें मिल रहा है कि शायद हम तैयारियां भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी भावनाएं हमारी अब उत्सृज हो रही हैं कि पता नहीं हम हमारे मनोभाव में ठीक प्रकार से रहेंगे कि नहीं। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि इस आनंद को हम झेल पाए और हम सेवा में लग सके। देखिए यहां पर इन्हें चिंता हो रही है कि इतने आनंद के वजह से सेवा नहीं हो पाएगी। कई बार हमारी स्थिति क्या होती है कि हमें जब सेवा दी जाती है तो दुख के कारण सेवा करनी पड़ेगी, तो उस दुख के सागर में डूबने के कारण सेवा नहीं होती। जैसे कि ये कथा है, भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे दारुक। तो दारुक वो भगवान श्री कृष्ण को पंखा ढुला रहे थे। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ले रहे थे तो भगवान के दर्शन लेते हुए उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो उनकी आंखों में आंसू जिसके वजह से वो ठीक से पंखा नहीं हिला पा रहे थे, तो वो अपने आप को कोस रहे थे, अपने आंसुओं को कोस रहे थे कि धिक्कार है इन आंसुओं के ऊपर, धिक्कार है इन आंखों के ऊपर, धिक्कार है मेरे ऊपर कि इन आंखों के वजह से, इन आंसुओं के वजह से मैं अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा। देखिए क्या स्तर है इनका। अब हमें कहा जाता है कि जब भगवान का हम नाम लें तो हमारे आंखों से आंसू आने चाहिए। तो क्या आती है आंखों से? नींद छलकती है खाली, परंतु आंसू निकलने चाहिए हमारे आंखों से जब भगवान का नाम लिया जाए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो हृदय पत्थर दिल हृदय है कि जब भगवान का नाम लिया जाए तो वो हृदय पिघले ना। वो आंखें केवल बटन है, बटन, यदि भगवान के नाम में वहां से अश्रु न निकले। और ये कान केवल सांप के बिल हैं यदि ये कान भगवान का नाम नहीं सुनते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए दारुक वो अपने आप को कोस रहे थे कि नहीं चाहिए मुझे ये आंसू, नहीं चाहिए मुझे ये आंखें यदि भगवान की सेवा में ये अवरोध हैं तो ये इस आनंद के समाचार को सुनकर ये सारे मंत्रीगण भाव विभोर हो गए और तुरंत फिर वो वशिष्ठ मुनि के पास गए और वहां से उन्होंने आज्ञा ली कि अब प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए क्या क्या तैयारियां करनी हैं उसकी सूची वशिष्ठ मुनि से उन्होंने ली, क्योंकि कल प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और इसलिए इसकी चर्चा हम करेंगे कल, कि क्या कल राज्याभिषेक हुआ या नहीं। यदि इसे जानना है आपको तो आप ठीक संध्या के समय इसी स्थान पर आ जाइए और पता लगाना आपका काम है कि राज्याभिषेक हुआ या नहीं हुआ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचना है कि जो हर शनिवार को हमारा सत्संग कार्यक्रम होता है सौजन्य बंगलों में, तो वहां पे नहीं होके वो कार्यक्रम यहाँ पे होगा। रामकथा राज्याभिषेक की लीला का चर्चा होगा और कुछ पेशारम जिन्होंने इस रामनवमी जो नासिक की पुण्य भूमि है, जो श्री प्रभु रामचंद्र जी से प्रसिद्ध है, उस भूमि में रामनवमी के अवसर पर जिन भक्तों ने इस कार्यक्रम के लिए प्रसाद का और बाकी सब व्यवस्थाओं के लिए लक्ष्मी का प्रयोजन किया है, उनके हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो हम उन भक्तों का नाम पुकारेंगे जिन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु जी उनको अपने हाथों से एक विशेष भेंट देंगे, जिससे हम उनको कृतज्ञता हम हमारी व्यक्त कर पाएंगे। तो कल का जो प्रसादम है वो श्रीमती तृप्ति अमित देसाई इन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो कल हम उसका अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, लेकिन कल का प्रसाद इन्होंने अपने घर वालों के और बुजुर्गों के आध्यात्मिक गति के लिए और सदगति के लिए स्पॉन्सर किया था। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि दो मिनट के लिए यहाँ पे आ जाए और ये जो भेंट है हमारे बंदे की तरफ से, इसको भाव जी के हाथ से स्वीकार करें। तो हम तीन बार जोर से हरी बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे। और आज की जो फूलों की सेवा है, राजभोग सेवा है, श्रृंगार सेवा और प्रसाद का सेवा है, ये सारे सेवाएं चार भक्तों ने मिलके हमने यहाँ पे उनको बांट के उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो हम सब भक्तों का एक एक नाम लेंगे, तो उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति आके यहाँ से अपना भेंट स्वीकार कर सकते हैं। तो अरुण, श्रीमान अरुण और श्रीमती रेखा भरोसा, इन्होंने अपने दो पुत्रों की प्रगति के लिए और भलाई के लिए चीख सोमेश और रितेश इनके लिए स्पॉन्सर किया है। तो हम उनके परिवार के एक सदस्य को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे कि कृपया यहाँ पे आइए और मंदिर की तरफ से ये बहुमूल्य भेंट जो प्रभुपाद की किताब है उसको स्वीकार कीजिए। तो हम इनका तीन से जोर बार हरि बोल बोल के कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दूसरे व्यक्ति है श्रीमान खैरना गुरुजी, अगर वो यहाँ पे है या उनके परिवार वाले कोई यहाँ पे है तो यहाँ पे आइए कृपया। और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तीसरे व्यक्ति है त्रंबक राव गायकवाड़, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम्स के लिए योगदान दिए हैं, तो उनको प्रार्थना करते हैं यहाँ पे आइए और अपनी भेंट स्वीकार कीजिए। और आखिरी हमारे सदस्य है डीएन सूर्यवंशी भावसर, अगर उनके परिवार वाले को यहाँ पे हो या खुद यहाँ पे है तो यहाँ पे आके अपना भेंट स्वीकार कर सकते हैं। डीएन सूर्यवंशी भावसर हम इन सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हृदय के साथ सारे वैष्णवों के लिए और ये राम कथा पूर्ण करने में जो सहायता योगदान दे रहे हैं इसके हम बहुत आभारी हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी और सारे वैष्णव इनकी पूरी कृपा इनको प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की बलसियावर रामचंद्र भगवान की हृदय गौर प्रेमानंदी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जाल।